2 महीने बरसात ना गिरे
तो कोदो की जो फसल होती है उसका सेवन करने पर नशा आने लग जाता है, वो मादक कोदो होते हैं, मदन को द्रवई है, इष्टोपदेश में आता है ना। तो 2 महीने तक अगर बारिश न गिरे तो फिर कोदो की फसल में मादकता आ जाती है, तो तद्भय कहलाता। तो उससे क्या होगा कि उससे आपादित मिश्र परिणाम अवत, थोड़ा मिश्र परिणमन होगा, इसी तरह उभयात्मक भवति परिणाम, सम्यक मिथ्यात्व के उदय से सम्यक और मिथ्यात्व इन दोनों रूप परिणाम हो जाता है। चारित्र मोहनीयम द्विधा, चारित्र मोहनी 2 प्रकार की है, अकषाय कषाय भेद, अकषाय और कषाय के भेद से, अकषाय को नो कषाय भी कहते हैं। ईषद अर्थ है नैय, ईषद अर्थ में नय ये समास है प्रयोगात, उसका प्रयोग करने के कारण ईषद कषाय हो अकषाय, ईषद कषाय को ही अकषाय कहा है। अकषाय वेदनीयम नवविधम, अकषाय वेदनीय 9 प्रकार का है, कुत कैसे तो हास्यादि भेद, हास्यादिक के भेद से, यस्य उदयात् हास्याविर्भावस, जिसके उदय से हंसी प्रकट हो तत् हास्यम, वो हास्य कर्म है। यद उदयात् देशादिश्वाउत्सुक्यम सारति, जिसके उदय से स्थान आदि के प्रति एक उत्सुकता रहती है वो रति है। अर्तिस्तद विपरीता, अर्ति जो है उससे विपरीत है। यद विपाकात् छोचनम सशोचन शोक, जिसके उदय से शोचनम यानी अफसोस होता है, किसी के वियोग का दुख होता है, वो शोक नाम का कर्म है। यद उदयात् उद्वेगस, जिसके उदय से उद्वेग अर्थात डर लगता है, तद भयम, वो भय नाम का कर्म है। यद उदयात् जिसके उदय से आत्मदोष संवरणम परदोष आविष्करणम सा जुगुप्सा, अपने दोषों को तो ढांक लेता है, दूसरे के दोषों को आविष्कृत करता है, प्रकट करता है, वह जुगुप्सा है। यद उदयात् स्त्रैणान भावान प्रतिपद्यते, जिसके उदय से स्त्री जैसे भावों को प्राप्त होता है, स स्त्रीवेद है, वो स्त्रीवेद है। यस्य उदयात् पौंसनान भावान आस्कंदति स पुंवेद है, जिसके उदय से पुरुष जैसे भावों को प्राप्त कर लेता है, वह पुरुषवेद है। यद उदयात् जिसके उदय से नपुंसकान भावान उपव्रजति, नपुंसक भाव को प्राप्त होता है, स नपुंसक वेद है। कषाय वेदनीयम षोडश वेदम, कषाय वेदनी 16 प्रकार का, कुत कैसे अनंतानुबंधादि विकल्पात, अनंतानुबंधी आदि के भेद से, तद यथा वो इस प्रकार, कषाय क्रोधमान मायालोभा, कषाय 4 है क्रोधमान मायालोभ, तेषां चतस्रो अवस्था, उनकी 4 अवस्थाएं हैं। अनंतानुबंधिनो प्रत्याख्यानावरणाः, प्रत्याख्यानावरणाः संज्वलनाश्चेति, ये 4 अवस्थाएं होते हैं। अनंत संसार कारणत्वान मिथ्या दर्शनम अनंतम, अनंत संसार का कारण होने के कारण मिथ्या दर्शन को अनंत कहते हैं। तद अनुबंधिनः अनंतानुबंधिनः, उसका अनुबंध, उसकी अनुबंधी, अनुबंधी का अर्थ संपर्क कराने वाली अनंतानुबंधी है। संपर्क, अनुबंध का अर्थ संपर्क होता है। जोड़ा तो, जोड़ा ना होते हुए भी संपर्क तो है, जैसे दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी है, लेकिन वो संपर्क नीचे ही कराई है, दूसरे से ऊपर नहीं जा सकता ना। अनुबंधी का अर्थ संपर्क कराने वाली अनंतानुबंधी। क्रोधमान मायालोभा, ये क्रोधमान मायालोभ होती है। फिर यद उदयात् देश विरतम संयमा संयमाख्याम अल्पाम अपि न कर्तुम शक्नोति, कर्तुम न शक्नोति, जिसके उदय से देश विरति यानी संयमा संयम नाम की जो देश विरति है उसको स्वल्प भी थोड़ी भी करने में समर्थ नहीं हो पाता, ते वे देश प्रत्याख्याना, देश प्रत्याख्यान देश व्रत का, देश त्याग का, प्रत्याख्यान यानी त्याग, उसका आवरण बनता, आवरण करने वाले अप्रत्याख्यान आवरण, अप्रत्याख्यान आवरण क्रोधमान मायालोभा, क्रोधमान मायालोभ। यहाँ पर अंतरंग आत्म परिणाम रूप जो देश विरति है उसकी चर्चा है, क्योंकि बाह्य में देश विरति होते हुए भी अंतरंग में यह गुणस्थान तभी बन सकता है जब यह अप्रत्याख्यानवरण कषाय का उदय न रहे। यद उदयात विरतिन कृत्स्नाम संयम आख्याम न शक्नोति, जिसके उदय से जो संपूर्ण विरति है जिसका नाम संयम है उसको न शक्नोति, कर तुम कर नहीं सकता, ते कृत्स्नम प्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानम आवरणवंत, वो संपूर्ण पूर्ण त्याग का आवरण करने वाले प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोग। प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोग होते हैं। सम एक ही भाव वर्तते, सम का अर्थ एक रूप। संयमेन सहावस्थानात्, संयम के साथ अवस्थित होने के कारण एक ही भूय ज्वलंती, एक रूप होकर के जो प्रज्वलित रहती हैं। संयमो वा ज्वलती, अथवा संयम भी जिसके साथ प्रकाशमान रहता है। सत्स्वपीति संज्वलना हो, जिनके होते हुए भी एशु सत्स्वपी, इन कषायों के उदय में भी संयम प्रज्वलित रहता, प्रकाशमान रहता है, वो संज्वलन नाम। बड़ा सुंदर दिया व्युत्पत्ति अर्थ। जो संयम के साथ एक रूप होकर के प्रकाशमान होती है वो संज्वलन, अथवा जिनके उदय में भी संयम प्रकाशमान रहता है वो संज्वलन। क्रोधमान माया लोग तयति समुदिता संता संत षोडश कषाय बनती, ये सब इकट्ठे कर लो तो 16 कषायें होती है, 9 नौकषाय होती है, 3 दर्शन मोहनी होती है। इस तरह कुल 28 प्रकृतियां मोहनी कर्म की बन जाती है। मोहनी आनंतर, मोहनीय के पश्चात उद्देश्य भाज आयुष, कथन करने के योग्य जो आयुष है उसकी उत्तर प्रकृति निर्ज्ञापनार्थवाह, उत्तर प्रकृतियों का निर्ज्ञापन यानी जानकारी कराने के लिए आह कहते हैं, ज्ञान कराने के लिए कहते हैं। नारक तैर्य योन मानुष दैवानी, नारकादिशु भव संबंधेन आयुषो व्यपदेश क्रियते। नारक आदि में जो भव संबंध होता है उसके कारण आयु का व्यपदेश यहाँ पर किया जाता है, आयु के नाम यहाँ पर बतलाए जाते हैं। नरकेशु भवम नारकम, नरक में होने, नरकों में होने वाली जो आयु उत्पन्न होती है वो नारक आयु है। तिर्यग योनिषु भवम, तिर्यग योनि में होने वाली तैर्यग योनम। मानुषेशु भवम मानुषम, देवेशु भवम दैवम इति। नारकेशु तीव्र शीतोष्ण वेदनेशु, नरकेशु नरकों में तीव्र शीत और उष्ण वेदनाएं होती है, तो यन निमित्तम जिसके निमित्त से दीर्घ जीवन लंबा जीवन प्राप्त हो रहा है तन नारकम, वो नारक आयु है। एवं शेषेशु भी, इसी प्रकार बाकी में भी लगा लेना, तैर्य जीवन में जिसके उदय से जीवन प्राप्त हो, मनुष्यों में जीवन प्राप्त हो वो मानुष आयु है, देवों में जीवन प्राप्त हो वो दैवायु है। नहीं, नरक में होने वाले नारक, तिर्यंच योनि में होने वाले तैर्यग योन, ये सब वृद्धि करके बनाए हैं शब्द, तिर्यग योन नहीं बनाए, तैर्यग योन। और मनुष्य से मानुष बनाया, देव से दैव बनाया, तो वो व्याकरण के नियम से तैर्यग योन शब्द बना है। योन शब्द तो योनि का वाचक हो गया, क्योंकि तिर्यंचों में अपन बोलने में हिंदी में तिर्यंचायु बोलते हैं, पहले भी आ चुका है तेरे क्यों से, तेरे क्यों नहीं जाना अंश, वहां भी तेरे क्यों नहीं। ये गुरु परंपरा का ही शब्द हो सकता है, वस्तु स्थिति तो यह है कि जहां जितना वेदन हो और जितना तीव्र अनुभाग हो, मोहनी कर्म के जितने तीव्र अनुभाग के साथ साता असाता का उदय हो, अब उतनी अधिकता रहेगी दुख में। बिल्कुल, वो ज्यादा ही है। बिल्कुल स्पष्ट है, अव्यक्त है। और फिर व्यक्त तो मुश्किल है, क्योंकि सव्वे खलु कम्म फलम थावर का तसाय कज्ज, पंचअस्थी का ये 39वीं गाथा, उसमें कह रहे हैं कि सभी स्थावर काय वाले जीव होते हैं वो कर्म फल चेतना का अनुभव करते हैं। तो कर्म फल चेतना किसको कहा? तो अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि अव्यक्त सुख और दुख का वेदन करते रहना, वो प्रकट नहीं कर सकते कि हमें कितनी वेदना हो रही है। क्या क्यों नहीं? बिल्कुल, अब ये अपने को क्या पता, लेकिन उदय तो है ना, है ना, उदय है ना, साता असाता दोनों का उदय। पानी देखेंगे तो उसको सुख तो होगा, उसको हवा चलेगी। अब मुक्तागिरी में देखो ना, जब बरसात गिरती है तो वहां के पेड़ पौधे में निगोद में भी वही बात है ना, वो तो है, तो वही स्थावर। हाँ, सूक्ष्म निगोद में फिर वातावरण जनित सुख दुख न था व्यक्त। ये वैसे भी अभी अपन पूर्ण कर रहे हैं। नहीं, सभी में हो सकते हैं, साता वेदनी भी अछाता वेदनी भी हो सकते हैं, वो तो अनुभाग की एक श्रेणी है। मिथ्यात्व में भी निधत्त निकाचित, वो तो खैर मोहिनी हो गया। घातिया में क्यों नहीं, मिथ्यात्व तो निकाचित निधत्त निकाचित दोनों रूप हो सकता है। नहीं, उसमें फिर कुछ अपवाद भी दिए हैं, ऐसे तो लक्षण में अपवाद नहीं होते, लेकिन दिए हैं कथनचित जिन बिंब दर्शन आदि से।
आयुष चतुर्विधम व्याख्या था, चार प्रकार की आयुओं का व्याख्यान हो गया। तदनंतर उद्दिष्टम यह नाम करना, आयु के पश्चात जिसका कथन था प्रकृति बंध के सूत्र में, वो नाम करना। तद उत्तर प्रकृति निर्णय अर्थवा नामकरण के उत्तर प्रकृतियों का निर्णय करने के लिए कहते हैं। गतिजात शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संगलन स्पर्श रसगंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघात प्रघात आतपोद्योत उच्छ्वास विहायो गदेह प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्त स्थिरादेय यश कीर्ति से राणी तीर्थकर। यद उदयाद आत्मा भवांतरम गच्छति सा गति, जिसके उदय से आत्मा भवांतर यानी अन्य भव को गच्छति प्राप्त करता है,
सा गति वो गति है। सा चतुर्विधा, वो चार प्रकार, नरक गति तिर्यक गतिर मनुष्य गतिर देव गतिश्चेति, चार भेद हो गए। यन्निमित्त आत्मनो नारको भवस्तन नरक गति नाम, जिसके निमित्त से आत्मा का नारक भव होता है, नारक भाव, भाव यानी पर्याय, तत् नरक गति नाम, वो नरक गति नाम है। एवं शेषेष्वपि योज्यम, इस तरह बाकी में भी जोड़ लेना। तासु नरकादि गतिषु, उन नरक आदि गतियों में अव्यभिचारिणा सादृश्येन, निर्दोष जो सदृशता है उसके माध्यम से एकीकृत अर्थात्मा जाति, जो इकट्ठी की गई जो अर्थात्मा है उसको जाति कहते हैं। अर्थात्मा यानी अर्थ रूप, माने पदार्थ रूप जो है वो जाति है। अर्थात अर्थ यानी पदार्थ, और आत्मा यानी रूप स्वरूप वो जाती है, माने समानता को सूचित करने वाला जो नाम कर्म होता है वो जाति नाम कर्म, तन निमित्तम जाति नाम, उसमें निमित्त भूत वो जाति नाम कर्म। तत् पंच विधम पांच प्रकार का, एक इंद्रिय जाति नाम, द्वीन्द्रिय जाति नाम, त्रीन्द्रिय जाति नाम, चतुरिंद्रिय जाति नाम, पंचेन्द्रिय जाति नाम, चेति, पांच भेद हो गए। यद उदयाद आत्मा एक इंद्रिय इति शब्द्यते तद एक इंद्रिय जाति नाम, जिसके उदय से आत्मा एक इंद्रिय है ऐसा कहा जाता है वो एक इंद्रिय जाति नाम कर्म एवं शेषेश हो भी योजन। इसी तरह बाकी में भी जोड़ लेना, यद उदयाद आत्मा शरीर निर्वृत्त, जिसके उदय से आत्मा के शरीर की रचना होती है तत् शरीर नाम कर्म, वो शरीर नाम है। तत् पंचविधम पांच प्रकार का, औदारिक शरीर नाम, वैक्रिय के शरीर नाम, आहारक शरीर नाम, तेजस शरीर नाम, कार्मण शरीर नाम, चेति, तेषाम विशेषो व्याख्या था, उनके भेद उनके विशेष पहले बतला चुके हैं। कहाँ बतलाया था? दूसरे अध्याय में, औदारिक वैक्रिय आहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्म प्रदेश तो संख्य, सब उसके भेद से विशेष बतला चुके थे। यद उदयाद अंगोपांग विवेकस, जिसके उदय से अंगोपांग का भेद होता है तद अंगोपांग नाम, वो अंगोपांग नाम कर्म, इसको अंगोपांग नहीं बोलना चाहिए, अंगोपांग। वो तो सूत्र में क्या है कि संधि कर दिए इसलिए शरीर अंगोपांग ऐसा बनता है, अंगोपांग है क्या सूत्र में? गतिजात शरीर अंगोपांग मूल में अंगोपांग है। त्रिविधम वो तीन प्रकार का, औदारिक शरीर अंगोपांग नाम, वैक्रिक शरीर अंगोपांग नाम, आहारक शरीर अंगोपांग नाम, चेति। तेजस और कर्म शरीर के अंगोपांग नहीं होते। यन्निमित्ता जिसके निमित्त से परिनिष्पत्तिस तद निर्माण, परिनिष्पत्ति यानी रचना हो जाती है जिसके निमित्त से, वो निर्माण नाम कर्म। तद्विविधम वो दो प्रकार का, स्थान निर्माणम प्रमाण निर्माणम चेति, स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण। तद जाति नामोदयापेक्षा, अब उसमें भी क्या होता है कि जाति नाम कर्म के उदय की अपेक्षा रहती है। चक्षुरादि नाम स्थानम प्रमाणम च निर्वर्तयति, और वो प्रमाण नाम कर्म जो होता है वो चक्षु के स्थान को भी रचता है और चक्षु के प्रमाण यानी आकार प्रकार को भी रचता है, कितना बड़ा होगा छोटा होगा वो सब इसका काम। निर्मीयते नहीं नीति निर्माणम, निर्माण यानी जिसके द्वारा निर्माण किया जाए, निर्मित किया जाए कोई भी अंग, वो शरीर नाम कर्मोदय वशात, शरीर नाम कर्मोदय के वश से उपात्तानां पुद्गलानां स्वीकार किए गए पुद्गलों का अन्योन्य प्रदेश संश्लेषणम यतो भवति, जिस कर्म के कारण एक दूसरे में प्रदेशों का संश्लेषणम गठबंधन हो जाता है तत् बंधन नाम, वो बंधन नाम कर्म है। जैसे दूध में पानी के प्रदेश, पानी में दूध के प्रदेश हिल मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, वैसा ही ये बंधन नाम कर्म है। ये तो दयाद औदारिक आदि शरीर आणाम विवर विरहितान न्यून्य प्रदेशानुप्रवेशेन एकत्वापादानं भवति तत्संघात नाम है। फिर जिसके उदय से औदारिक आदि शरीरों के जो विवर विरहित अन्योन्य प्रदेशानुप्रवेशेन, यहां पर जो खंडाकार बना है वो गलत है, विवर विरहित माने निश्छिद्र, अन्योन्य प्रदेश परस्पर में जो प्रदेश होते हैं उनका अनुप्रवेशेन अनुप्रवेश पूर्वक एकत्वापादन एक रूपता को प्राप्त हो जाना है भवति, ऐसा जो होता है तत्संघात नाम, संघात नाम कर्म। संघात नाम कर्म के उदय से शरीर में प्रदेश गठबंधन को रहते हैं और फिर उसमें बीच में निश्छिद्र रहते हैं, गठबंधन तो बंधन नाम कर्म से। तो यदुदयाद औदारिक आदि शरीर, यदुदयाद औदारिक आदि शरीर आकृति निवृत्तिर्भवति, जिसके उदय से औदारिक आदि शरीरों की आकृति की रचना होती है तत् संस्थान नाम, आकार जो बनता है वो संस्थान नाम से, तत् छोड़ा तत् शोढ़ा विभज्यते, वो छह विभागों में बांट जाता है। समचतुरस्र संस्थान नाम है, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान नाम है, स्वाति संस्थान नाम है, कुब्ज संस्थान नाम, वामन संस्थान नाम, हुंड संस्थान नाम, ये छह भेद हो जाते संस्थान के आकृतियों के। फिर यस्य उदया, जिसके उदय से अस्थि बंधन विशेषो भवति, अस्थि बंधन में विशेष यानी भेद होता है, तत् संघनन नाम, वो संघनन नाम कर्म है। तत् षड विदम, पहले भी बताया था कि संघनन और सहन शक्ति इन दोनों में अंतर है। संघनन ये अस्थि से संबंध रखने वाला है, वो बता देते हैं। तो इसके तत् षड विदम, वो छह प्रकार का है संघनन। वज्रर्षभ नाराज संघनन नाम, वज्र नाराज संघनन नाम, नाराज संघनन नाम, ये शुरू के तीन संघनन। आदिम तिग संघटनम नथिथि जिने ही निदिठम, गुमटसार कर्मकांड में गाथा थी, ये आदि के तीन संघनन स्त्रियों में नहीं होते ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। और बाकी तीन अभी पंचम काल में तो सभी के बाकी के तीन होते। कम पैड़ी ग्रंथ की टीका में आता है कि पंचम काल में, भारतीय ज्ञानपीठ से छपी हुई है, ये तीन संघनन ही पंचम काल में पाए जाते हैं। अर्धनाराज संघनन नाम, कीलिका संघनन नाम, असंप्राप्ता श्रिपाठिका संघनन नाम चेती। इसलिए अभी आजकल कुछ लोग बोलते हैं कि आज पांचवें स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकते, ये सब बातें कहीं मतलब सिद्धांत में उपलब्ध नहीं है। अब अगर संघनन कितना भी निकृष्ट हो, असंप्राप्ता श्रिपाठा का हो, तो फिर वो आठवें में जा सकता है, तो पांचवें की कहां से सीमा बना ली पता नहीं। पर ये उल्लेख मिलता है उसमें, कम्म पैड़ी नाम का एक ग्रंथ है, प्राकृत में ग्रंथ है, उसकी टीका में लिखा है कि इस पंचम काल में 16वें स्वर्ग तक की जा सकते हैं अर्धनारायण संघनन। तीसरे नहीं छठे, अर्धनारायण चौरा छठे तक जा सकते हैं। तीसरे वो लोग बोलते हैं कि तीसरे तक जा सकते हैं, ऊपर पांचवे तक जा सकते हैं। बिना प्रमाण के लोग कैसे बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं, समझ में नहीं आता। मैंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो कि सामने वाला तो सोचे कि बिल्कुल ये तो शास्त्र से ही बोल रहा हो। फिर अर्धनाराज संघनन नाम, कीलिका संघनन नाम, असंप्राप्ता श्रिपाठिका संघनन नाम चेति। फिर यस्य उदयात्, जिसके उदय से स्पर्श प्रादुर्भाव तत् स्पर्श नाम, स्पर्श की उत्पत्ति होती है, वो स्पर्श नाम है। अब स्पर्श का ज्ञान होता है वो तो मति ज्ञान है, लेकिन अपना एक विशेष प्रकार का स्पर्श होगा शरीर संबंधी, क्योंकि शरीर नाम कर्म ये सब भेद मतलब नाम कर्म के हैं, तो पुद्गल विपा की प्रकृतियां हैं। तो जिसके उदय से स्पर्श होंगे अलग अलग प्रकार, तद अष्टविधम, वो आठ प्रकार का। कर्कश नाम, किसी के शरीर का स्पर्श कर्कश होता है। मृदु नाम, किसी का कोमल होता है। नारियल में कर्कश नाम कर्म का उदय होता है, उसकी जो नरेठी है ऊपर की, जो उसका छिलका है ना ऊपर कवच वो, और अंदर मृदु नाम कर्म का उदय है। फिर गुरु नाम यानी भारी, लघु नाम यानी हल्का, स्निग्ध नाम यानी चिकना एकदम स्मूथ जिसको बोलते हैं, रूक्ष यानी, अब यहाँ पर गुजराती में चिकना का अर्थ होता है चिपचिपा मतलब चिपकने वाला, वो नहीं है यहाँ। स्निग्ध का अर्थ जो चिकना हिंदी में दिया है वो चिकने का मतलब होता है लीसा गुजराती में जिसको बोल सकते हैं। रूक्ष नाम यानी खुरदुरा, शीत नाम यानी ठंडा, उष्ण नाम यानी गर्म चेती। यन निमित्तो रस विकल्पस तद रस नाम, जिसके निमित्त से रस के भेद बन जाते हैं वो रस नाम। कोई ना कोई स्वाद रहता है किसी भी शरीर में, अब वो त्रस शरीर का तो छोड़ो अपन उसकी वो नहीं करते हैं, लेकिन वनस्पतियों में भी जो अलग अलग प्रकार के स्वाद होते हैं। तत् पंचविधम, पांच प्रकार के, तिक्त नाम, कटुक नाम, कषाय नाम, अम्ल नाम, मधुर नाम चेति, ऐसे पांच प्रकार के हो गए। यद उदय प्रभो, जिसके उदय से उत्पन्न गंधस गंध होता है, तत् गंध नाम, वो गंध नाम कर्म है। तद द्विविधम, दो प्रकार का, सुरभि गंध नाम, असुरभि गंध नाम चेति, सुरभि और असुरभि, सुगंध और दुर्गंध। यद हेतु को वर्ण विभाग, तद वर्ण नाम, जिसके हेतु से वर्ण का विभाग होता है वो वर्ण नाम कर्म। तो पंच विधम पांच प्रकार का, कृष्ण वर्ण नाम, नील वर्ण नाम, रक्त वर्ण नाम, हरिद्र वर्ण नाम, शुक्ल वर्ण नाम चेते, पांच रंगों का बता दिए। फिर पूर्व शरीर आकाराविनाश हो व्यस्त उदयात भवती तदानुपूर्वे नाम, पूर्व शरीर के आकार का नाश नहीं होता। आत्मा जब इस शरीर को छोड़ के जाती है दूसरे शरीर में, तो रास्ते में उसका शरीर, उसका आकार इसी शरीर जैसा रहता है, तो वो कौन सा रहता है? अनुपूर्व। तब चतुर्विध, उसके चार भेद है। नरक गति प्रायोग ज्ञानुपूर्व नाम, तिर्यक गति प्रायोग ज्ञानुपूर्व नाम, मनुष्य गति प्रायोग ज्ञानुपूर्व नाम, देवगति प्रायोग ज्ञानुपूर्व नाम, ऐसे चार भेद। तो ये नरक गति प्रायोग ज्ञानुपूर्व नाम जो है, जैसे मनुष्य से कोई श्रेणिक राजा नरक गए, तो यहाँ से नरक जाते तक जितनी दूरी उन्होंने इस शरीर को छोड़ने के पश्चात पूर्ण की थी, तो वहाँ मार्ग में जो उनका आकार अंतिम मनुष्य शरीर जैसा था, वो नरक गति प्रायोग ज्ञानुपूर्व नाम के उदय से बना हुआ था। तो नरक जाने के बाद वहाँ नरक गति जैसा आकार हो जाएगा। ऐसे किसी का भी कोई भी आकार हो सकता है। अब जैसे राघव मच्छ है 1000 योजन का, उसको मर करके चींटी बनना है, तो चींटी बनते समय रास्ते में जब भी उसका शरीर रहेगा वो 1000 योजन का, मतलब आत्मा का आकार रहेगा उसका पिछले शरीर जैसा। और जब यहाँ नई नवीन स्थान पर उत्पत्ति होगी, तो फिर वो संकुचित होकर के नाम कर्म के उदय से छोटा सा बन जाएगा, चींटी बन जाएगा। असुर कुमार देव है 25 धनुष का, मर करके उसको मनुष्य बनना है छोटा सा, तो वो जब तक यहाँ आएगा माँ के गर्भ में, तब तक के उसका 25 धनुष का आकार रहेगा आत्मा का, वो मनुष्य गति प्रायोग ज्ञानुपूर्व नाम रहेगा। माने ये जितने भी नाम दिए ना नरक गति, तो नरक गति में नरक जैसा आकार नहीं होता, उसकी पिछली गति में जो आकार था वैसा आकार होता है। अब तिर्यक गति लिखा है, तो तिर्यंज गति में क्या, तिर्यंज गति में जो भावी शरीर मिलने वाला है वैसा आकार नहीं है, अभी जहां से उसने छोड़ा है वैसा आकार रहता है, इसलिए पूर्व शब्द जुड़ा हुआ है उसमें। फिर यस्योदयाद अह पिंडवत गुरुत्वात् न अध पतति, जिस प्रकार जिसके उदय से लोहे के पिंड के समान भारी होने के कारण न तो नीचे गिरता है, न चार्क तूलवत लघुत्वात् ऊर्ध्वं गच्छति, न ही अकौवे के उस फूल के समान, अकौवे के अर्कतूल बोलते हैं इसको, कि वो आंकड़े का जो फल होता है उसको खोल दो तो अंदर से बाल बाल वाला वो निकलता है, और फिर वो उसमें बीज रहता है, बीज में हवा में उड़ता रहता है। तो न तो अगुरु लघु नाम कर्म के उदय से जीव का शरीर न तो ज़्यादा भारी होता है न ज़्यादा हल्का होता है। क्या हाँ, ये आकार तो शरीर का आकार नहीं है, आत्म प्रदेशों का आकार है। हाँ, आत्मा तो अमूर्त है, तो कर्मण शरीर रहेगा, वैसे आकार में तेजस कर्मण तो रहेंगे, विग्रह का तो कर्म योग है, कर्म का ही योग तो रहेगा वहां, तदा गुरु लघु नाम। यस्योदयात् स्वयं कृतोद्बंधन मरुप्रपतन आदि निमित्त उपघातो भवति, तद उपघात नाम। जिसके उदय से अपना घात कर सकता हो, फांसी लगा करके या मरुप्रपत, यानी मरुप्रपत का क्या है, मरु का अर्थ तो रेगिस्तान होता है, और प्रपतन आदि निमित्त तो मतलब कहीं ऊपर से कूद करके मर जाए, तो पहाड़ से कूद जाए, तो ये सब जिसके कारण मतलब अपना घात कर सके वो उपघात नाम कर्म है। कहीं कहीं पर उपघात नाम कर्म का दूसरा स्वरूप दिया हुआ है कि अपने शरीर के ही अंग ऐसे बन जाते हैं कि जिससे अपने को कष्ट होने लग जाए। उपघात का बंद 8वें गुणस्थान तक के होते हैं। यन निमित्त परशस्त्रादेर व्याघात तत्परघात नाम, जिसके निमित्त से दूसरों के शस्त्रादिक के द्वारा व्याघात हो जाए वो परघात नाम कर्म। फिर परघात का दूसरा स्वरूप ऐसा भी आता है कहीं पर कि जिसके निमित्त से अपने शरीर के अंगोपांग दूसरों का घात कर सकते हो, वो यहाँ सर्वार्थ सिद्धि में तो यही स्वरूप दिया है कि अपने द्वारा अपना घात जिस कर्म के उदय से कर सके वो उपघात, और दूसरे के द्वारा अपना घात जिस कर्म के उदय से हो जाए वो परघात नाम कर्म है।